श्री राधा राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्कान पंजाबी विभाग में प्रातः भागवत सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सतम स्कंद के अध्याय 7 के ऊपर सत्संग चल रहा है। सातवां स्कंद सबसे छोटा है, 15 अध्याय है केवल। 15 अध्यायों का ये सातवां स्कंद है। कर्म वासनाएं ऊती कहते हैं, भागवत का एक विषय है ऊती। ऊती मतलब कर्म वासनाएं, जिससे भिन्न प्रकार के शरीर बनते हैं, आकृतियां बनती हैं, प्रकृतियां बनती हैं, संस्कृतियां बनती हैं। तो तीन प्रकार की वासनाएं, असुरी वासनाएं, उसकी प्रधानता से हिरण्यकशिपु का वर्णन है। दैवी वासनाएं, उसकी प्रधानता से प्रहलाद महाराज का वर्णन है। और मानवी वासनाएं, उसकी प्रधानता से युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों के उत्तर हैं, जो मानव समाज के लिए हैं। तो 5-5 अध्यायों के ऐसे 3 इसमें विभाग हैं और ये 15 अध्यायों का छोटा सा स्कंद है। जो इस पूरा स्कंद बोल कौन रहा है? नारद। इस पूरे स्कंद का वक्ता नारद है और इस पूरे स्कंद का श्रोता युधिष्ठिर महाराज है। वक्ता नारद मुनि है, जो भगवान का अवतार है विशेष रूप से भक्ति प्रचार के लिए। और श्रोता धर्मराज युधिष्ठिर है, जो स्वयं धर्मराज है। अब जिस और ये कथा हो कहां रही है? हस्तिनापुर में, आपके इसी दिल्ली में, दिल्ली के पास। ये कथा नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर में ही पूछा था और ये चर्चा नारद जी हस्तिनापुर में कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए। ये घटना घटित कहां हुई है? नरसिंह देव का अवतार कहां हुआ? प्रभुपाद जी ने लिखा है भागवत में, मुल्तान में आप आज भी एक जगह है, उसका नाम है प्रहलादपुरी। कई साल पहले वहां बहुत बड़ा मंदिर था, जिसमें खम्भ के अंदर से नरसिंहादेव प्रकट हुआ था। वो खम्भ टूटा हुआ वहां हुआ करता था। और पुराने जमाने में भक्त जब आते थे पाकिस्तान प्रचार करने, तो मुल्तान में देखने जाते थे उस मंदिर को, प्रहलादपुरी में। और पाकिस्तान का नाम भी प्रहलाद देश तब कहते थे, प्रहलाद देश, प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव और हिरण्यकश्यप का राज वहां था। ये प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है। वैसे अवलम में भी नरसिंहदेव के प्रकटे की कथा है। तो कल्प के भेद से नरसिंहदेव का अवतार अन्य स्थानों में भी हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी का वर्णन जो है वो मुल्तान में है। अब जो ये अध्याय है, इसकी चर्चा कहाँ हो रही है? इसकी चर्चा हो रही है स्कूल में, गुरुकुल में। किसकी गुरुकुल है? असुर बालकों की गुरुकुल है। हिरण्यकश्यप के राजसभा राजमहल के पास में ही गुरु शुक्राचार्य का घर है और उसके दो बेटे शंड और अमरक है, और वो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, उनमें से सबसे छोटा प्रहलाद है। और ये सब बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं। इससे पहले चर्चा, अच्छा एक और बात यहाँ ये भी समझते चले, शिष्य का धर्म है गुरु की प्रशंसा करना, लेकिन गुरु किसी शिष्य की प्रशंसा करे ये अद्भुत चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये अध्याय में गुरु नारद अपने शिष्य प्रहलाद की महानता का वर्णन करते, ये भगवान की, हम भगवान को कहें आपके भक्त हैं ये तो हमारा धर्म है, लेकिन भगवान किसी को कहे कि आप मेरे भक्त हो ये अद्भुत है। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं आप मेरे भक्त हो, तो ऐसे नारद जी अपने भक्त की महिमा गा रहे हैं, अपने शिष्य की महिमा गा रहे हैं, महानता का वर्णन कर रहे हैं। अब अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि एक बार प्रहलाद शिक्षा लेके गया, हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या पढ़ा, तो कहा कि वन में जाओ बाबा, घर में क्या करना है। बोले ये कहा विष्णु का भजन करो। बोले तो मेरे शत्रु की बातें क्यों करते हो, तुमको ये कैसे कहा। तो हंसने लगे और लगता है कि हमारे गुरुकुल में कोई विष्णु का एजेंट है, जरा इसको संभालो, अच्छी तरह से कड़ी नजर रखो। तो टीचर्स ने पूछा कि तुम्हारे को ये प्रहलाद शिक्षा दी किसने। प्रहलाद ने कहा ये शिक्षा जब तक भक्तों की कृपा न हो तब तक आपको समझ भी नहीं पाएंगे, उतर दिया ही नहीं। दोबारा वापस घर आया तब हिरण्यकश्यप ने पूछा तो नवदा भक्ति पूरी बता दी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पान। अब तो बहुत हिरण्यकश्यप परेशान हुआ, तुम यहां शिक्षा कहां से प्राप्त की। बोला पिताजी ये शिक्षा साधु कृपा से नहीं, बगैर नहीं मिल सकती। दोनों को उत्तर नहीं दिया, न गुरुओं को बताया प्रहलाद ने कि मेरे को शिक्षा कहां से मिली है ये भक्ति की, न पिता हिरण्यकश्यप को बताया। लेकिन आज तीसरी बार जब सब प्रयासों से प्रहलाद मरा नहीं, तो शंड और अमरक ने कह दिया आप महाराज चिंता मत करो, हमारे पिताजी आएंगे तो इनको शिक्षा दे देंगे, हमारे को दो हम संभालते हैं। वो तो ले तो गए स्कूल में, मास्टर घर में भोजन करने गए लंच आवर में, और प्रहलाद ने प्रचार शुरू किया, तो वो प्रवचन करने लगे असुर बालकों को। तो असुर बालकों ने कहा हमारे गुरु ने तो कभी ये पढ़ाया नहीं है, ये आप जो हमको बता रहे हैं कि आप सीख के कहां से आए। तब नारद की शिक्षा जो प्रहलाद महाराज ने अपनी माता कयादु के गर्भ में सीखी थी वो बता रहा है। तो एक बात इसमें बड़ी अद्भुत ये लगती है कि भक्ति का रहस्य प्रहलाद ने न हिरण्यकश्यप को बताया न शंड और अमर को बताया, क्योंकि दोनों को भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं थी, लेकिन इन बच्चों को बताया जो प्रहलाद के ऊपर श्रद्धा रखते थे और उसके साथ कीर्तन में भाग लेते थे। तो जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी इस भगवत गीता को श्रद्धालुओं को प्रचार करो और श्रद्धालुओं को मत बताना, तो प्रहलाद महाराज भी 12 महाजनों में एक महाजन है। वैसे नारद के सारे शिष्य महाजन है, नारद स्वयं महाजन और ये दूसरा महाजन प्रहलाद महाराज महाजन है, तो ये मर्यादा स्थापित की है कि असुर प्रकृति के व्यक्तियों को नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो और अपराध करेंगे। ऐसे नहीं कि उनसे द्वेष है, अगर आप किसी नास्तिक को भगवान की महिमा बताएं तो वो भगवान के लिए दो चार और बुरे शब्द कहेगा, इसलिए वो और पापी का भाग बन और पाप का भागी बनेगा। तो दूसरे को अधिक पापी बनाने से बचाने के लिए उसको ये उपदेश नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक पाप करेगा। तो ये भी उनके ऊपर कृपा है कि अभी वो अधिकारी नहीं है तो उनको पाप में ज्यादा लिप्त नहीं करना चाहिए। अब प्रहलाद महाराज अपनी जीवनी बताते हुए कहते हैं नारद जी इंद्र से मेरी मां को छुड़ाया, कहा कि इसके गर्भ में बहुत बड़ा साधु पुरुष बच्चा है, भागवत पुरुष है। और गुरु है देवताओं का देव ऋषि नारद। इंद्र ने गुरु की आज्ञा मान ली और कयाधु को छोड़ दिया। तो नारद के आश्रम में कयाधु, नारद का आश्रम कहा है? नारद तो 3 दिन रह नहीं रहता नहीं है एक जगह, तो आश्रम कहां बनाया नारद ने? नारद को शराप है ना, कहीं 3 दिन रह नहीं सकता है। एक तो हमारे को द्वारका में ये कथा मिलती है कि नारद आए दिन द्वारका जाता था और महीने वहां रहता था। भगवान उसको कहते जाओ जाओ समाचार लेके आओ, फिर जाके फिर वापस आ जाता था। क्योंकि एक तो द्वारका में दक्ष के शराप का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भगवान का धाम है, वहां कोई शराप प्रभाव नहीं डालता है। तो क्या नारद शराप से बचने के लिए आके द्वारका रहते थे? नहीं, लिखा ऐसे है कृष्ण के दर्शन की लालसा थी, वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां आके रहते थे। लेकिन शराप वहां कुछ नहीं करता है, जैसे वहां शराप कुछ नहीं करता है, ऐसे वृंदावन तो साक्षात भगवान का धाम है, वहां भी शराप कुछ नहीं करेगा। आज भी आप कुसुम सरोवर के सामने नारद का आश्रम है, वहां नारद रहते थे। तो यहां आश्रम बनाया तो यहां तो शराप कुछ करेगा नहीं, ये तो धाम है। तो कहीं तो नारद का आश्रम था, और नारद के आश्रम में स्त्रियां रहती थी। ये भी आश्चर्य लगता है कि कयाधु रही थी तो और कुछ स्त्रियां भी तो रही होंगी ना, जैसे वाल्मीकि के आश्रम में सीता अगर रही थी तो और स्त्रियां भी रही थी जो उनकी सेवा में होती थी, उनके संग में वो रहती थी। तो ये गुरुजनों के आश्रम में, इसलिए एक परिभाषा है, गुरुकुल तब सफल होती है जब गुरु माता गुरु माता भी होती है, क्योंकि बच्चों के भावों को माता ज्यादा समझती है। बच्चे स्कूल में जाएं तो गुरु माता का होना जरूरी है, गुरु और गुरु माता दोनों होना चाहिए। आप देखेंगे श्री कृष्ण गए हैं गुरुकुल में तो सांदीपनी मणि और उसकी पत्नी भी है, गुरु माता है, अरुंधति वशिष्ठ के साथ है जहां राम जी शिक्षा लेने गए। तो गुरुकुल में नारद ने बताया, और नारद की कथा बताते हुए प्रहलाद कहते मेरी माँ को नारद जी ने अपने पास रखा, मेरी माँ ने विनती किया कि जब तक मेरा पति वापस ना आए तपस्या करके तब तक मेरा गर्भ सुरक्षित रहे। तो नारद जी ने ये आशीर्वाद दिया कि ना आपको पीड़ा होगी गर्भ की, और आपका गर्भ तभी आपको बच्चे का जन्म होगा जब आपका पति आ जाएगा, तब तक आप यहां सुरक्षित रहो और मेरी कथा सुनो। और लिखा है प्रहलाद कहते हैं मेरे लिए और मेरी माँ दोनों के लिए नारद कथा रोज करते थे, सबको सुनाते थे, लेकिन मेरे को भी लक्षित करके करते थे। मेरे को वो सब याद है, लेकिन मेरी माँ स्त्री होने के नाते और वापस अपने घर के काम में लगने के कारण उसको तो भूल गया, लेकिन मेरे को सब याद है। इससे एक बात बहुत बड़ी प्रैक्टिकल सीखने की ये है कि गर्भवती स्त्रियों को हमेशा भागवत का अच्छी तरह से श्रवण वर्णन करना चाहिए, तो उनसे बच्चों का संस्कार अच्छा होगा। एक ये सिद्धांत सीधा सा प्रहलाद के जीवन में और महाभारत में अभिमन्यु के जीवन में देखने को मिलता है कि गर्भ में बच्चे के ऊपर माता के श्रवण का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आजकल के बच्चे बहुत नाटी बदमाश क्यों होते हैं, बंदर जैसे उछलते कूदते क्यों हैं? क्योंकि माता जी गर्भवती सब टीवी के ऊपर टंगी होती है, टीवी में तो सब भूत दिखते हैं, तो बच्चे भी भूतों जैसे पैदा होते हैं। इसलिए जैसे कहते हैं गर्भवती को ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, ऐसी गर्भवती को तो टीवी को देखना ही नहीं चाहिए, उसके लिए वर्जित होना चाहिए, नहीं तो बच्चों का बहुत संस्कार बिगड़ जाते हैं। वो पहले से ही बिगड़े हुए तब सुधारे कहां से, क्योंकि जन्म से ही बिगड़ा हुआ है। एक जन्म से भगवत भक्त प्रहलाद पैदा हुआ नारद की कथा सुन के, तो ये एक शिक्षा मिलती है। अब नारद आगे कहते हैं प्रहलाद जी कि नारद जी ने जो उपदेश दिया था वो ये उपदेश था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग को अपनाना चाहिए जो भगवान स्वयं पसंद करते हैं, अथवा जो मार्ग भगवान कहते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, इससे मैं आसानी से मिलता हूं, उसको अपनाना चाहिए। ये कल का श्लोक था कि भगवान को के पास जाने के बहुत मार्ग हैं, हजारों सैकड़ों मार्ग हो सकते हैं, लेकिन किस मार्ग के ऊपर चलना चाहिए? जो भगवान स्वयं आदेश करें और जिससे भगवान का मिलना सुलभ हो, उस मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। ऐसा एक प्रसंग रामायण में आता है, लक्ष्मण भगवान राम से पूछते हैं कि आपको प्राप्त करने का सरल मार्ग क्या है, अथवा आप किससे प्रसन्न होते हैं, कौन आपको प्रसन्न कर सकता है, आपको कौन आपको प्रिय है। वहां रामचंद्र ने भी ऐसा ही उत्तर दिया है जो यहां भागवत में उत्तर है, और वही ऐसा ही उत्तर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है जो हम कहते हैं सब उत्तर एक जैसा ही, क्योंकि भगवान की शिक्षा में भेद नहीं होता, भगवान और भगवान के भक्त के। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान एक है और गुरु भी एक है, क्योंकि गुरु एक ही भगवान की शिक्षा देता है। जो उसकी शक्ल अलग हो सकती है, उसका देश अलग हो सकता है, उसका रंग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी शिक्षा अलग नहीं हो सकती है गुरु। तो अब वो कौन सा मार्ग है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान के द्वारा ही वो स्थापित मार्ग है, और इस मार्ग को कहते हैं भागवत धर्म। वेदों में दो धर्म है, एक को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, वो गृहस्थियों के लिए है, दूसरे को कहते हैं निवृत्ति मार्ग, वो व्रतों के लिए है, सन्यासियों के लिए। लेकिन इन दो मार्गों से अलग एक तीसरा मार्ग है, उसको कहते हैं भागवत धर्म, वो सबके लिए है। तो हम जिस धर्म का पालन करते हैं उसको भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म में सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, जैसे पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वो गीधराज जटायु वो भी राम की गोद में बैठ सकता है भागवत धर्म में, गाय भी भगवान श्री कृष्ण के पांव को चाट सकती, हिरण भी भगवान को प्रेम कर सकता है। भागवत धर्म में सब जीवों को भगवान से प्रेम करने का, सेवा करने का अधिकार है, जबकि दूसरे नियमित धर्मों के अंदर अधिकारी को केवल सेवा कर, जैसे ब्राह्मण धर्म स्मार्ट धर्म के अंदर केवल वाजपेयी यज्ञ ब्राह्मण कर सकता है, अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ऐसे वैश्यों के लिए अलग यज्ञ है, लेकिन सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्णा सब जप सकते हैं। भागवत धर्म हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब जो श्लोक हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये नारद की शिक्षा के श्लोक हैं, और प्रहलाद महाराज उनको उनकी आवृत्ति कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और सुनने वाले असुर बालक प्रहलाद के सहपाठी कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो ये शब्द नारद के हैं, जैसे ना नारद उवाच, ये शब्द नारद के हैं, लेकिन बोल कौन रहा है? प्रहलाद बोल। इस पूरे अध्याय में प्रहलाद उवाच लिखा हुआ नहीं, उसने हमने देखा था प्रहलाद उवाच लिखा हुआ नहीं, क्योंकि ये प्रहलाद के शब्द नहीं है, ये शब्द नारद के है, प्रहलाद उनको केवल रिपीट करता है। इसको हम कहते हैं, कभी कोई हम बात कहते हैं ना कि ये बात जो है वो फलाने गुरुदेव ने कही है, अथवा ये बात धर्मराज युधिष्ठर की कही हुई है, ये बात भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता में है, तो दूसरे की बात को उद्धृत करके बोलना है। ऐसे प्रहलाद एक बहुत अच्छे शिष्य के नाते अपने गुरु के शब्दों को ज्यों का त्यों बोल रहा है। तो ये श्लोक जो है ये वो मार्ग है जो भगवान ने बताया है भगवान को पाने के लिए अति उत्तम है। तो आइए इस श्लोक के शब्दों को पढ़ते हैं। गुरु शुश्रूषा भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणे नच संगेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधने नच श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणा तत्पदाम्बुरोः ध्यानात् तत्लिङ्गे क्षहरणादिभिः क्षहरणादिभिः। तो पहला शब्द है गुरु शुश्रिया भक्त्या, भक्ति से गुरु जी की सेवा करना। शुश्रूषा का मतलब है सेवा, भक्ति से गुरु जी की सेवा करना। अब सेवा का विस्तार बताते हैं। सर्व लब्ध अर्पणे न च, जो कुछ भी भौतिक उपलब्धि आपके पास है वो गुरु को अर्पण करो। श्रील प्रभुपाद के आप तात्पर्य में देखेंगे कि वैसे सब कृष्ण अर्पण करना चाहिए, लेकिन कृष्ण अर्पण करने के लिए माध्यम गुरु होता है। इसका अर्थ ये है कि गुरु की परिभाषा, इसमें ये गुरु का क्वालिटी बता रहे हैं, गुरु का गुण बता रहे हैं। गुरु को सब कुछ अर्पण करना चाहिए जो सब आपका भगवान को अर्पण करने में समर्थ हो। इसको प्रभुपाद जी की भाषा में लिखा है, गुरु ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है। जो आप गुरु को देते हैं वो एकदम भगवान को देता है कि ये आपका भक्त आपके लिए लाया है और ये आप स्वीकार कीजिए। ये इसका अर्थ है गुरु के माध्यम से। अभी भी जो पूजा करते हैं पुजारी, आरती जो आरती चवन भी रुलाना होता है तो गुरु के हाथ में देते हैं कि गुरु जी आप, वो तो गुरु अपने गुरु के हाथ में देता है। अंत तो गत्वा वो पूजा की सामग्री सीधी राधा रानी के हाथ में जाती है, तब श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते। ये प्रभुपाद जी का प्रवचन है इंग्लैंड में कि आपको कुछ कृष्ण को अर्पण करना है, एक फूल भी, तो आप राधा रानी के हाथ में दो और कहो श्रीमती राधा रानी आप ये आपके प्रिय कृष्ण को अर्पण कीजिए, और राधा रानी के हाथ से श्री कृष्ण तत्काल ले लेंगे। इसलिए कहते हैं गुरु की जो कृपा है वो राधा रानी से आती है। राधा रानी की कृपा गुरु के माध्यम से शिष्यों को प्राप्त होती है। तो गुरु को अर्पण करने की परिभाषा है कि गुरु अपने गुरुओं के द्वारा अंत तो गत्वा वो चीज राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को अर्पण करेगा। ये इसका अर्थ है। गुरु को अर्पण करें और गुरु के पास ही रह जाए तो न गुरु का लाभ है न शिष्य का लाभ, उसमें गुरु शिष्य दोनों का लाभ नहीं, क्योंकि दोनों दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मोह वो तो फिर आसक्ति हो जाएगी। ये नारद गुरु बोल रहा है। नारद गुरु बेचारे के न घर है न परिवार है, उसको कुछ रखता भी नहीं है, वो तो एक वीणा है जो भगवान ने दी है, बाकी तो गुरु के पास लोटा और लंगोटा होता है और तो कुछ होता नहीं है। तो जो भी दिया जाता है वो भगवान के सेवा में लगा देता है, भगवान को अर्पण कर देता है। ये परिभाषा इसकी है। तो गुरु शुश्रूषा भक्त्या, भक्ति से गुरु की सेवा करनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। पुराने जमाने की एक कथा है, एक शिष्य गुरु के पास गया, देखा प्रभुपाद के तात्पर्य में ये है इसलिए मैं बोलता हूं, कि गुरु की शारीरिक सेवा करनी चाहिए, उसको स्नान कराना, उसके कपड़े धो के देना, उसका चरण दबाना, ऐसे लिखा है आज के तात्पर्य में। तो वो गया, गुरु जी को ठंडे पानी से नहलाए, फिर पंखा झेले, फिर ठंडाई बना के दोपहर को पिलाए, चरण दबाए, गुरु बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया, यो घर आया बड़ा सुखी हो गया, गुरु की कृपा से घर अच्छा चलने लगा। दूसरे को लगा कि इतना बड़ा ये सुखी कैसे है, बोले मैं गुरु की सेवा करके आया, भक्ति से किया। तो भक्ति शब्द तो उसने सुना नहीं, बोला तुमने क्या किया गुरु का, बोला ठंडे पानी से स्नान कराया, फिर पंखा झेला, फिर ठंडाई बना के पिलाई। ये दिसंबर में गया गुरु के पास, गुरु को बोला मैं आपकी सेवा करने आया हूं, आपको ठंडे पानी से स्नान कर। अब गुरु बोलते ये ठंडे पानी से क्यों, बोले नहीं नहीं ठंडे पानी से स्नान करो, फिर मैं पंखा चलाऊंगा, फिर आपको ठंडाई। तो गुरु जी ठंडा हो गया। तो भक्ति वाली सेवा नहीं है तो लाभ कुछ नहीं। तो गुरु शुश्रूषा भक्त्या लब्ध अर्पणेन च, जो भी आपकी उपलब्धि है वो असल में गुरु की कृपा से है। अगर वो कर्मों की आप ले लेंगे तो फिर आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अगर वो भगवान को अर्पण करेंगे गुरु के द्वारा तो आप भविष्य के कर्म बंधन से मुक्त हो गए। ये कोई भगवान गुरु के ऊपर मेहरबानी नहीं है, ये आपके बंधन मुक्ति का सरल साधन है। नहीं तो जो कुछ आपको पास है वो आपको आगे के कर्म बंधन की श्रृंखला में बांध देगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास है तो हम अपने लिए उपयोग करेंगे तो उसका कर्म बंधन तो लगेगा ना। तो गुरु को देने का अर्थ, भगवान को अर्पण करने का अर्थ है कि उसके कर्म बंधन से मुक्त हो जाए सदा के लिए। तो गुरु का, तो गुरु की सेवा करने का उद्देश्य ही जन्म मृत्यु से मुक्त होना है। तो जब कर्म के बंधन से मुक्त होंगे तभी तो ये काम होगा ना। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा है, संगेन साधु भक्तानां, साधु स्वभाव के भक्तों का संग करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि गुरु वैष्णव, हरि भगवान, गुरु और वैष्णव, तीनों की प्रसन्नता से भक्ति सफल होती है। तीनों की प्रसन्नता चाहिए। तो यहां ये किसने बताया है, भगवान का मार्ग है जो नारद बता रहा है कि गुरु की तो सेवा करो लेकिन साधु भक्तों का संग करो। साधु भक्तों का संग करो, साधु स्वभाव के भक्त, क्योंकि तीसरे स्कंद भागवत में भक्तों की भी 81 प्रकार है तीन गुणों के अंतर्गत। तमोगुण के भक्त भी हैं, रजोगुण के भी हैं, सतोगुण के भी हैं, और उनके मिक्सचर से 81 प्रकार के भक्त हो जाते हैं। है तो भक्त, हरि कृष्ण नाम जपता है लेकिन दूसरों से ईर्ष्या करता है, ये रजोगुण का भक्त है। भक्त है, तमोगुण का भक्त है, जप करता है, मंदिर में आता है लेकिन सबसे झड़ाई करता रहता है, झगड़ा करता है, क्रोध करता है, ये तमोगुण का भक्त है। तमोगुण और रजोगुण के भक्त को दूर से प्रणाम करना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। साधु भक्त संग, साधु भक्त का करना है। साधु भक्त वो है जो कम से कम सतोगुण में हो। संग साधु भक्त का करना है, सम्मान सबको देना है। तो भक्त की भी श्रेणियां भागवत में लिखी हुई है, तो ये भी बहुत सावधानी है कि संग किसका करना चाहिए। तो साधु भक्तों का, तो भक्त के आगे साधु शब्द लगाया, साधु भाव वाला भक्त मतलब सद्भाव वाला भक्त, मतलब सतोगुण वाला भक्त, कम से कम जो सतोगुण की वृत्ति वाला भक्त है, न लोभी नहीं है, लालची नहीं है, अहंकारी नहीं है, क्रोधी नहीं है, कामी नहीं है, ऐसे भक्त का संग करना चाहिए। साधु संगेन साधु भक्तेन, तो साधु भक्तों के संग में क्या करना चाहिए, ईश्वर आराधने न च, अब देखो तीनों चीजें हो गई ना, अरुग हरि गुरु वैष्णव तीनों हुए कि नहीं हुए? पहले गुरु हुआ, फिर वैष्णव हुआ, अब हरि। ईश्वर आराधने न च, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। आराधना शब्द से राधा शब्द निकलता है, आराधना करना उससे राधा शब्द बनता है। कैसे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, व्रज वधु वर्गेण। कैसी भगवान की पूजा करनी चाहिए कृष्ण की? जैसे ब्रज की गोपियां करती हैं। आराधने का अर्थ ये लेना चाहिए ठीक तरह से। आराधना का मतलब जैसे ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, जिसमें वो श्रृंगार भी करती हैं, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं, उनकी जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता है। आराधना की परिभाषा ये है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रति अक्षरे प्रति श्लोके कृष्ण गोपी नाना रंग। भागवत के एक एक अक्षर एक एक श्लोक में गोपी और कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है, लेकिन दिखता नहीं है हमको, लेकिन ये एक एक श्लोक में है, लेकिन उसको दिखता है जो वो महाप्रभु के शिक्षाओं के अनुसार भागवत पुरुषों से भागवत सुनते हैं, तब ये सब चीजें दिखती हैं। तो अब तीनों चीजें हो गई कि नहीं हुई? कदम बिहारी हरि गुरु वैष्णव हुआ कि नहीं हुआ? पहले गुरु, फिर वैष्णव, फिर हरि। इन तीनों की प्रशंसा से भक्ति में आगे बढ़ा जाएगा। केवल गुरु की आराधना करेगा तो एक पंथा ही हो जाएगा, एक पंथ चलेगा सिर्फ। केवल भगवान की आराधना करेगा, गुरु नहीं होगा तो आतंकवादी बनेगा। हाँ, वो फेनेटिक बनेगा, आतंकवादी बनेगा। मेरे को भगवान ने कहा सबको मार दो, और सबको मारना शुरू कर दे। और दोनों की आराधना करेगा, और वैष्णव संघ और वैष्णव सदाचार उसमें आएगा ही नहीं। अगर वैष्णव संघ नहीं करेगा तो उसकी रहनी उसको आएगी नहीं। वो तो वैष्णव संघ से हम वैष्णव सदाचार सीखते हैं, वो सदाचार तो होगा ही नहीं उसमें, तो वो प्रचार नहीं कर पाएगा। सदाचार नहीं होगा तो आचार नहीं होगा, तो प्रचार नहीं पाएगा। तो तीनों चीजें चाहिए, और तीनों बैलेंस होना चाहिए। एक आदमी किसी होटल में गया, पूछा कौन सी सब्जी है? बोला पंपकिन और अंगूर की सब्जी है। पंपकिन मतलब भोपला, क्या कहते हैं, हाँ, सीताफल, बड़ा वाला सीताफल की और अंगूर की सब्जी। बोला कितना है? बोला आधा आधा है। बोला लाओ एक प्लेट। लाया तो केवल सीताफल था, अंदर अंगूर एक भी नहीं था। बोला तुमने बोला आधा आधा है, ये क्या है, ये तो आप चीटिंग करते हो। बोला नहीं, एक सीताफल एक अंगूर डाला, 50-50% दोनों बराबर डाले। तो ऐसे ऐसे साधु संग अंगूर जितना हो और सीताफल जैसा भगवान की भक्ति हो तो भी गड़बड़ हो जाए। ये ठीक बैलेंस हो जाना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए, अच्छी तरह से बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये बैलेंस ही हमारे को इस भौतिक जगत में तीनों गुणों से बचा के रखता है। ये तीन सेवाएं तीन गुणों से मुक्त करने के लिए हमारे अति आवश्यक है। तो साधु संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधने न च। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर आराधना में क्या करें? ईश्वर आराधना कौन सी, ईश्वर आराधना कैसे, ईश्वर आराधना का अर्थ क्या है? तब कहते हैं श्रद्धया तत्कथायां च। ईश्वर आराधना का अर्थ है श्रद्धा से भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। तो श्रद्धा शब्द जहां आता है उसका अर्थ होता है भक्ति, क्योंकि भक्ति शुरू श्रद्धा से होती है और भक्ति मिलने के बाद भी श्रद्धा मुख्य रहती है। इसलिए 12वां अध्याय भगवद गीता का भक्ति योग का अध्याय है। इस अध्याय का आरंभ भी श्रद्धा से होता है और पूर्ण आहुति भी श्रद्धा से होती है। अंतिम श्लोक क्या है? ये शरदधान पथ परमा भक्तास्ते अति में प्रिय। जो श्रद्धाना है, श्रद्धा से संपन्न भक्त है, वो भक्त मुझे प्रिय है। और शुरू कैसे होता है? मैं आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता होगा श्रद्धया पर्योपेता, श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं। तो श्रद्धा आदौ श्रद्धा भक्ति शुरू ही श्रद्धा से होती है। तो भगवान की कथा में भी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रृणवताम श्रद्धया नित्यम, नित्य प्रतिदिन श्रद्धा से हरि कथा सुननी चाहिए। तो श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? असल में जो चीज सामने नहीं है उसके ऊपर विश्वास करने को श्रद्धा कहते हैं। जो चीज सामने नहीं है लेकिन शब्द के ऊपर विश्वास कहने को श्रद्धा कहते हैं। प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन वाणी के ऊपर विश्वास, आप ही कहते हैं भाई मेरे ऊपर विश्वास करो ना, मैं आपको विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, इसका मतलब अभी मेरे पास है नहीं, मेरा विश्वास कर लो मैं आपको दे दूंगा, इसका अर्थ ये हुआ ना। तो श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा का अर्थ है ये पूरा निश्चय हो दृढ़ कि शास्त्र के शब्द जो हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो उसके ऊपर पूरा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान जब कह रहे हैं नवे भक्त प्रणश्यति, तो भक्त को इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भक्त भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो वो कहीं भी जाने में घबराएगा नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास होगा उसको। तो भगवान के शब्दों के ऊपर श्रद्धा, साधु के वचन के ऊपर श्रद्धा। तो कथा श्रद्धा से सुनने का मतलब संशय नहीं होना चाहिए। इस भगवत ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है? अश्रद्धाना, उसको नहीं, जो जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको यह नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर श्रद्धा होगी तो तत्व ज्ञान मिलेगा, दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। मतलब कथा में क्या सुनना चाहिए भाई? कथा में क्या सुनना चाहिए? क्योंकि आजकल कथा करने वाले भगवान की कथा कम करते हैं, अपनी कथा ज्यादा करते हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कथाकार भगवान की कथा भुला के अपनी कथा ज्यादा करते हैं, इसलिए नारद जी सावधान करके कहते हैं कथा सुननी चाहिए लेकिन उसमें दो काम करना चाहिए, कीर्तनई गुण कर्मणा। उस कथा में भगवान के गुणों का और लीला का कीर्तन होना चाहिए, अपना नहीं। इस सावधानी के लिए कह रहे हैं कि कथा में क्या होना चाहिए। देखो कीर्तन शब्द का अर्थ केवल हरे कृष्ण जपना कीर्तन नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कीर्तन का अर्थ है भागवत का प्रवचन भी कीर्तन है, गीता का सत्संग भी कीर्तन है। कीर्तन का मतलब कीर्ति गाना भगवान की। तो उसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन होना चाहिए। और नारद जी आगे इसी सातवें स्कंद में बताएंगे वासुदेव अवतार कथा, भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा। क्योंकि अवतार की कथा में लीला होती है, जब भगवान उतर के नीचे आते हैं तो कोई विशेष लीला करते हैं, तो अवतार कथा में लीला और भगवान के कौन सा गुण विशेष रूप से भगवान का कथा में भक्तों को आश्वासन देता है? भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों, भक्त वत्सल का अर्थ क्या होता है? वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। जैसे गाय बछड़े को जन्म लेते चाट के साफ करती है, जहां गाय कहीं हो और घर में लानी हो जंगल से तो बछड़े को उठा के आओ, गाय पीछे भागती हुई आएगी। पुराने जमाने में गाय ग्वाले ले जाते थे जंगल में, और कोई गाय बछड़ा जंगल में देती थी तो गाय को लाने के लिए बछड़े को उठा के आओ, गाय पीछे दौड़ती दौड़ती आएगी, अपने आप आएगी, ये गाय का स्वभाव है। किसी ने हमको छोटी बछड़े वाली गाय इंदौर में एक बार दान में दी थी, अब उसको शहर से कैसे ले जाए, वो मारुति वैन के पीछे बछड़ा रख दिया और हम सिलो ले जाए और गाय उसके पीछे अपने आप आ रही है, कोई उसको रस्सी बांधने की जरूरत नहीं, तो 5-7 किलोमीटर बेचारे पीछे अपने आप आ गए। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों के सारे अवगुणों को चाट के साफ कर लेते हैं, जैसे नरसिंहदेव प्रहलाद को चाट रहे हैं। और जहां जहां भक्त जाते हैं वहां भगवान पीछे पीछे घूमते हैं उसके, जैसे गाय के पीछे, बछड़े के पीछे गाय जाती है, ऐसे प्रभुपाद जी तो यहां से चले गए वृंदावन से अमेरिका, और पीछे से जगन्नाथ भागते भागते जाके उनको पकड़ लिया सैन फ्रांसिस्को में कि कहां आप हमको छोड़ के आए, वो अपने आप वहां पहुंच गए। एक साक्षी गोपाल हम जानते हैं जो वृंदावन से साक्षी देने के लिए ब्राह्मण की चले गए उधर। यहां तो सैकड़ों राधा कृष्ण गौर निताय भारत से भागते हुए विश्व में प्रभुपाद के पीछे चले गए। कितने विग्रह दुनिया के अंदर गए हैं प्रभुपाद के पीछे। तो ये इसको भक्त वत्सल का अर्थ ये है कि जहां भक्त जाएगा वहां भगवान पीछे अपने आप भागते भागते पहुंच जाएंगे। तो ऐसे दयालु भगवान कहां मिलेंगे, किसी दूसरे शास्त्र में ऐसा भगवान मिलेगा नहीं। अर्जुन को ऊपर बिठाता है और स्वयं घोड़े हांकता, ऐसा भगवान कहीं मिलेगा? सेवाधारी भगवान कहीं मिलेगा? आज्ञाकारी भगवान मिलेगा? अर्जुन कहता है सैन्य और व्योर मध्य मेरी दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करो, भगवान कहते जो आज्ञा ले चलता। ऐसा भगवान किसी दुनिया के शास्त्र में है ही नहीं। ये भगवान का जो गुण है ये भक्तों को आकर्षण करता है। इतना भगवान दयालु है कि अपने भक्तों की सेवा का मौका ढूंढता रहता है कि कब मुझे ऐसा अवसर मिलेगा कि इसमें भक्त की इच्छा पूरी करूं। चेतना चरितमृत में तो लिखा है कि कृष्ण के पास और कोई काम नहीं है, एक ही काम है। मतलब क्या काम है? भक्त वांछा पूरी करे कृष्ण न और अन्य कृत, और कोई काम नहीं है कृष्ण को, केवल भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वो वेटिंग देखता रहता है। लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए उसका यहां वर्णन है। वो भक्त हो जाना है, वो होना चाहिए जो गुरु की सेवा करे, अपना सब लाभ गुरु के माध्यम से भगवान को अर्पण करे और ईश्वर आराधना करे, साधु भक्तों का संग करे, कथा को श्रद्धा से श्रवण करे और कथा में भगवान के गुण का कीर्तन हो और लीला का कीर्तन हो। गुण कर्मणाम, कर्मणाम का अर्थ है भगवान की लीला का कीर्तन हो। और फिर क्या करें? तद पाद आरोहो, पाद रूहो मतलब चरण कमल, ध्यानात भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे। भगवान के चरण कमलों के ध्यान को देवता लोग कहते हैं। कौन से देवता लोग? ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, ये सब भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति करते कहते हैं तव पाद पोते ना, आपके चरण कमलों की नौका से भवसागर पार कर जाते हैं संत लोग। तो भगवान के चरणों का ध्यान करना मतलब उस नौका में अपने आप को बिठाना जो आप हमको भवसागर से पार ले जाएगी। भगवान के चरण क्या है? भवसागर के से पार होने की नाव है। भगवान के चरणों का ध्यान करो, चढ़ने की जरूरत नहीं है, भवसागर पार हो गया। ये कैसे चरण है? अभय चरणारविंद रे, ये चरण भय से मुक्त करने वाले हैं। कौन से भय से? जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करने वाले। तो चरण आराधना का अर्थ होता है चरण ध्यायेत, चरणों का ध्यान करना चाहिए। इसलिए जब ठाकुर जी को यहां देखने आओ तो पहले देखना ही चरणों से शुरू करो। और चरणों में आप देखेंगे तो पुजारी लोग थोड़ा सा चंदन और तुलसी लगाते हैं चरण के अंगूठे के ऊपर दिखाई देगी, उससे थोड़ा ऊपर देखें तो पायल बांधी होगी पांव में भगवान के, कभी फूलों की होती है कभी आभूषण होता है, उससे थोड़ा आगे फिर दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हृदय में सदा भगवान के चरण विराजमान होने चाहिए। ये तो गर्म दूध की कथा आपने सुनी होगी कभी, राधा रानी कृष्ण के साथ 100 साल की जुदाई के बाद सिद्ध आश्रम में मिलन हुआ। सारी रानियां राधा रानी से मिली। रात को रुक्मणी आके कृष्ण को देखे तो सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। आप सोए नहीं द्वारकाधीश? बोला राजा रानी अभी तक जाग रही है, मैं नींद कैसे आएगी मुझे? बोला क्यों जाग रही है? बोला रात को सोने से पहले दूध का गिलास गर्म पीती है तब सोती है, आपने दिया नहीं है। तो रुक्मणी भागती हुई गई जल्दी में, गर्म दूध किया और चांदी के बर्तन में डाल के राजा रानी को दिया और दे के वापस आई। वापस आके देखती है तो श्री कृष्ण के चरण के तलवे जले हुए हैं, फफूंदे बने हुए हैं। तो आश्चर्य हुआ कि आप बाहर कहीं गए नहीं, आपके चरण जल कैसे गए? श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मणी तूने बहुत गर्म दूध दे दिया राधा रानी को, उसके हृदय में मेरे चरण है, वो उससे जले हैं। तो यहां शब्द है पाद आरोह ध्यानेत का मतलब भगवान के चरण हृदय में साक्षात है जैसे राधा रानी, क्योंकि आगे आराधना शब्द है। तो जैसे वो चरण जल गए गर्म दूध पीने से, इसका मतलब भक्त के हृदय में भगवान के चरणों का सदा ध्यान निरंतर रहना चाहिए। ये ऐसी नौका है, ऐसी नौका है इस भव सागर में, कहीं हमको डूबने नहीं देगी ये। और ये लिखा हुआ है कि संतों ने आपके चरणों की ही नाव बनाई है भव सागर को पार करने के लिए, लेकिन ये संत इतने दयालु हैं भव सागर पार करने के बाद नौका को यहीं छोड़ के जाते हैं ताकि दूसरे लोग भी पार कर लें। तो ये और साधना है क्या, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। अब पूछे कोई के भगवान के चरण कमल गोलोक में हम कहां से ध्यान करें, ये प्रश्न उठता है ना, सामने तो है नहीं। तब कह दिया नारद ने तद लिंगे न इच्छा, तद लिंगे न उसके श्री विग्रह, लिंगे न का मतलब श्री विग्रह, भगवान का जो ये श्री विग्रह है जो मूर्ति स्थापित प्राण प्रतिष्ठित है, ईक्ष है, उसको देखना चाहिए। वैसे लिंग का एक अर्थ तो है श्री विग्रह और दूसरा लिंग का अर्थ फिर चरण कमल होते, तो भगवान के श्री विग्रह के चरण कमलों का क्या करना चाहिए, ईक्ष दर्शन करना चाहिए। अहरणम आदि भी ही, अहरणम आदि भी ही का मतलब पूजा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए मतलब चरणों में फूल चढ़ाना चाहिए, चरणों में चंदन लगाना चाहिए, चरणों का सम्मान करना चाहिए। तो चरणों की पूजा करनी चाहिए और वो पूजा सुलभ आपके लिए कैसे है घर में बैठे करने के लिए, भागवत का पहला और दूसरा स्कंद पढ़ लो, ये भगवान के चरणों की पूजा है। पहला और दूसरा स्कंद भागवत का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, ये आप निरंतर पढ़ने का अभ्यास करते रहो तो भगवान के चरणों की आराधना हो गई। तो ये घर बैठे सब कर सकते हैं और सरलता से कर सकते हैं, पहला और दूसरा स्कंद भागवत का भगवान के चरण कमल है। ये तो हुआ इन शब्दों का अर्थ, ठीक है, श्लोक के शब्दों का अर्थ समझ में आया। अब श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसका अनुवाद सुनिए। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु क्यों लिख दिया, इसलिए कि वो आपकी चीज को जो भगवान तक पहुंचाए वो प्रमाणिक गुरु, जो बीच में खा जाए वो अप्रमाणिक गुरु, बस सीधा इसका अर्थ ये, जो सरल अर्थ है वो समझना चाहिए ना। इसलिए प्राय जो भी चीज मिलती है वो कहते हैं श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, मैं श्री कृष्ण आपको अर्पण करता हूं, उसके मुख में ये शब्द हमेशा रहना चाहिए श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। एक शब्द एक जीवन में पक्का कर लीजिए, जो आपको मिले कहो श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, दो न दो लेकिन कहना तो सीखो। क्यों, कहते कहते एक दिन देने वाला दिन भी आ जाएगा ना, तो पहले मुख से तो कहना सीखना चाहिए ना। और जो कार्य करो कहो श्री कृष्ण प्रीति अर्थे, ये भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। जप करो तब भी कहो श्री कृष्ण प्रीति अर्थे जप विनियोग, मैं जप भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूं, मैं पाठ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूं। ये समय तो हो गया, आपकी घड़ी तेज है क्या? अच्छा, संडे की घड़ी बंद होती है। तो प्रणाम प्रमाणिक गुरु की परिभाषा हो गई, ठीक है। और फिर भक्ति से और श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो, उसके पास का मतलब शिष्य के पास, ऐसे नहीं गुरु के पास जो कुछ। एक गुरुजी आश्रम छोड़ के चले गए, वापस आए तो बाहर कुछ अच्छा बना हुआ था। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा बड़ी सेवा की है। बोले जो वो अपने यहाँ भगवान के सामान सोने चांदी के थे, बोला गुरुजी वो तो सब बेच दिए तब तो ये बनाया है। तो गुरु का माल नहीं। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए। और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। भगवान के अर्च विग्रह की पूजा शास्त्र और गुरु के आदेश अनुसार, ये दो शब्द प्रभुपाद ने जोड़ के लिखे हैं। क्योंकि लोग अपने मन से किसी ठाकुर जी की पूजा नहीं कर सकते, और फिर पूजा की पद्धति भी सीख के फिर करनी चाहिए। ऐसे बहुत जगह ठाकुर जी तो विराजमान है लेकिन अलमारी के अंदर है और साल में एक बार कपड़े बदलते हैं। देख जाके देखो सब मंदिरों के अंदर पूजा नहीं होती है, वो तो वो शोकेस में जैसे मूर्तियां रखी होती हैं ऐसे रखी होती हैं। तो वो मूर्ति वो तो ठाकुर जी की पूजा नहीं, तंद लेंगे आराधना नहीं है वो तो। जैसे इससे तो शोरूम वाले अच्छे हैं कि उसको कम से कम रोज बाहर निकालते हैं, फिर झाड़ते हैं, फिर अंदर रखते हैं। वो माया मूर्तियां अच्छी हैं, मंदिर वाले तो इतना भी नहीं करते हैं कि कभी झाड़ भी दें उसको। वो तो साल में एक बार कपड़े बदल के दूसरे, वो भी कोई आया देने वाला यजमान तो, नहीं तो रहने दो। ऐसे नहीं, इसलिए दो शब्द ऐड कर दिए हैं, गुरु के आदेश अनुसार। अब तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, पिछले श्लोक में बताया गया है कि जिस विधि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रीति प्रेम तथा स्नेह तुरंत बढ़े, उस भव बंधन से मुक्त होने के हजारों उपायों में से सर्वश्रेष्ठ है। तो जो कल श्लोक हुआ उसमें यह बताया था कि सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है हजारों में से, तो वो उपाय ये आज का श्लोक है। ये इस श्लोक का पहला प्रावचन, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यायम। वास्तव में धर्म के सिद्धांतों का सत्य अत्यंत गुह्य है। इसका अर्थ ये है, ये कौन कहता है, ये शब्द किसके हैं? धर्मस्य अर्थम तत् गुह्यात्म, ये कौन कह रहा है? ये यमराज कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब यम दूतों ने कहा कि वो तीन विष्णु दूत आए, वो चार विष्णु दूत आए और हम तीन यम दूतों को भगा दिया, रस्सियां निकाल के, और उस पापी को छोड़ा दिया। क्या किया उसने, उसको छोड़ा दिया? बोला वो नारायण कह रहा था। यमराज कहता है देखो आपको मैंने शिक्षा दी है कि पापियों को पकड़ने के आना, एक शिक्षा देने में मुझसे भूल हो गई। वो शिक्षा ये है कि मरते समय कोई गोविंद गोपाल नारायण राम कृष्ण कहे उसके पास कभी मत जाना। यह मैंने आपको पहले बताना भूल गया, ये हरे कृष्ण वालों के पास तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए, ये खाते पीते हरे कृष्ण करते हैं। फिर आगे बोला कि कंठी माला गले में हो, तिलक हो, तो उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। एक आदमी मर गया, ऊपर से कौआ उड़ के जाता था, उसने उसके ऊपर बीट कर दी और बीट उसके इधर मस्तक के ऊपर गिर गई। यमलोक वाला यमराज वाला दूत आए, बोला ये तिलक लगा है क्या, इसको ले जाएं कि छोड़ें? वो डाउट में पड़ गए, बहुत परेशान हुए। तो ये जो तिलक लगा के रोज जाना है ना, ये बहुत बड़ा सावधानी है, तो यमराज के दूत नजदीक भी नहीं आएंगे। तो ये रोज सज धज के तिलक लगा के सुंदर जाना चाहिए बाहर, इसमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और ना ही शर्म करनी चाहिए, सबको लगाना चाहिए, प्रतिदिन लगाना चाहिए। ये भगवान के चरण धारण करना है, मस्तक के ऊपर भगवान के चरण धारण करने का चिन्ह है। ये शरीर भगवान का मंदिर है और ये चुटिया जो है ये शिखा है, ध्वजा है, ऊपर फहरा रही है, तो वो तो जिसकी ज्यादा ध्वजा फहराती है उसकी जय होती है। हाँ, ये तो ये ध्वजा है ऊपर, तो ये आपको पहले बताया था, ये एरियल है, ऊपर से सब समाचार आता है। ये अध्यात्म, ये आध्यात्मिक एंटीना है। ये एंटीना नहीं है तो कोई समाचार नहीं है। तो ये सब सुसज्जित होके घर से निकलना चाहिए, सब समाचार है, रहना चाहिए। तो धर्म का, तब यमराज कहते हैं धर्म का नेम बहुत मुश्किल है। उसने नारायण का नाम लिया, हमारे अधिकार से वो छूट गया, उसको हाथ मत लगा और आगे भी कभी हाथ मत लगाना। तो ये यमराज कहते हैं, फिर कहा धर्म को कौन जानते हैं? तब कहते हैं धर्म को हम 12 महाजन जानते हैं। हम 12 महाजन नाम लेके अपना नाम आखिर में लिया कि हम 12 महाजन जानते हैं। हाँ, शंभु, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि, हम महाजन जानते हैं इस धर्म को। और हम अन्य लोगों को क्या करना चाहिए? महाजन ये न गतस्य पंथ, जो रास्ते से महाजन जाए उसके चरण कमलों के निशानों के ऊपर चलना चाहिए, उसकी शिक्षाओं के आधार पर चलना चाहिए। तो अब प्रभुपाद जी के धर्म कहते हैं, धर्म को समझना इतना आसान नहीं है, धर्म के सिद्धांतों का सत्य अत्यंत गुह्य होता है, फिर भी यदि कोई धर्म के नियमों को वास्तव में स्वीकार कर लेता ले तो उसे सरलता से समझा जा सकता है। जैसे कहा गया है कि धर्मांत साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान देते हैं, ये भी यमराज के शब्द हैं। धर्म भगवान देता है, कोई आदमी धर्म नहीं बनाता, धर्म भगवान के द्वारा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते धर्म संस्थापनार्थ आया, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। तो भगवान का अवतार धर्म की स्थापना, धर्म भगवान देता है, धर्म कोई आदमी नहीं बना सकता। आदमी के बनाए हुए धर्म को धर्म नहीं कहते हैं, उसको रिलीजन कहते हैं, लेकिन भगवान के दिए हुए धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि भगवान सनातन है, वो जो धर्म देता है वो सनातन है। तो रिलीजन में और धर्म में अंतर है, धर्म की परिभाषा ही कुछ और है, वो बहुत गुह्य है। धर्म की विधि परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित है, क्योंकि वे परम सत्ता है। पिछले श्लोक में भी इसे भगवत तो उदित शब्द द्वारा सूचित किया गया है। भगवान के आदेश अच्युत है और उनके लाभ पूर्णत है, निश्चय है। भगवान के आदेश अच्युत हैं, भगवान ने जो शब्द कहा वो कभी चूकेगा नहीं, वो सत्य। तो भगवान का आदेश क्या है? भव मत भक्तो, मन मना भव मत भक्तो मत याजी मामना, भगवान का आदेश है, मेरे भक्त बनो, फिर भी नहीं बन रहे। भगवान का वचन सत्य है, अचूक है, लाभ उसका पूर्ण है और वो निश्चित है, वो होके रहेगा। इसके आदेश अनुसार धर्म का पूर्ण स्वरूप भक्ति योग है, और भगवान के अपने शब्दों में धर्म का पूर्ण स्वरूप भक्ति योग है, जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक में बताया गया है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भव मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, भक्त्या माम अभी जानाति, मुझे केवल भक्ति से जाना जा सकता है, शक्य अहम भक्त्या, केवल भक्त मुझे जान सकते हैं। तो भक्ति योग का अभ्यास करने के पूर्व प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो भक्ति योग सिखाएगा कौन? गुरु के चरणों में बैठकर भक्ति योग को सीखना चाहिए। वैसे भक्ति योग सिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो भक्ति योग सिखाने के लिए आए। निज भक्ति योग वैराग विद्या निज भक्ति योग। चेतन महाप्रभु के अवतार का उद्देश्य क्या है? निज वैराग विद्या भक्ति योग, ये सिखाने के लिए आए थे। निज वैराग विद्या, वैराग विद्या का मतलब एक तो है कि सब कुछ संसार का त्याग, ये तो हुआ इसका शब्द अर्थ, लेकिन असली अर्थ है निज वैराग विद्या, मतलब विशेष राग। वैराग का मतलब विशेष राग, मतलब भगवान में अनुराग हो, भगवान में आसक्ति हो, विशेष आसक्ति हो, ये शिक्षा देते हैं। और ये कहां से होती है? ये भक्ति से होती है। भक्ति से विशेष भगवान में अनुराग होता है, ये वैराग का अर्थ है। वैराग का अर्थ ये नहीं है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन इतना भगवान में अनुराग होता है कि दूसरा दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है तो अपने आप छूट जाता है, कुछ छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो निज वैराग विद्या भक्ति योग देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, और महाप्रभु के अन्याय ही इसका अर्थ है भक्ति योग दे सकते हैं। इसका अर्थ अगर ठीक तरह समझेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे, तो इसका अर्थ ये निकलेगा श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार जो भक्ति को ग्रहण करेगा वही भक्ति योग को ठीक तरह प्राप्त कर सकता है, नहीं तो अधूरी भक्ति कहीं से भी मिल जाएगी। योग मिश्रित भक्ति मिल जाएगी, कर्म मिश्रित भक्ति मिल जाएगी, ज्ञान मिश्रित भक्ति मिल जाएगी, लेकिन निज भक्ति योग नहीं मिलेगा। शुद्ध भक्ति योग और कहीं से नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये, इसका गहरा अर्थ ये है, शुद्ध अनन्य भक्ति जिससे कृष्ण प्रेम मिले वो केवल महाप्रभु के माध्यम से इस उसके अंतर्गत मिलेगी, बाकी मिश्रित भक्ति कहीं से, क्योंकि बगैर भक्ति के तो कोई फल मिलेगा ही नहीं, तो वो तो कहीं से भी मिल जाएगी। तो प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, श्री रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य है, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य है, वो भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं गुरुपाद आश्रय है, गुरुपाद आश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तस्मान कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, तो गुरु के पाद का आश्रय लेने का अर्थ क्या है कि गुरु से शिक्षा और दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा का मतलब मंत्र होता है और शिक्षा का मतलब शास्त्र को समझना, दोनों करना चाहिए। ऐसे आश्चर्य लगता है कि अर्जुन कृष्ण को कहते हैं शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, और अर्जुन को कृष्ण ने भगवद गीता की शिक्षा दी, कोई विशेष मंत्र दिया ऐसे दिखता नहीं भगवद गीता में, लेकिन उसका अर्जुन ने क्या किया, जो कृष्ण ने आदेश किया उसका पालन किया, कृष्ण के लिए कार्य सब कृष्ण के लिए करना शुरू कर दिया। तो शिक्षा और दीक्षा दोनों शब्द गुरु के लिए लिखा है, विश्रमेण गुरु हो सेवा, और फिर बड़े श्रद्धा से गुरु की सेवा करनी चाहिए। साधो वर्तमान वर्तम सधर्म प्रचार भोगादि त्याग कृष्णस्य हेतवे। मनुष्य को पहला कर्तव्य, मनुष्य का पहला कर्तव्य यह है कि प्रमाणिक गुरु का स्वीकार करे। छात्र या शिष्य को अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए, गुरु से पूछते रहना चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासा सदा करते रहना चाहिए, उसे सनातन धर्म के विषय में पूर्ण सत्य जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, गुरु से प्रश्न उत्तर सदा करना चाहिए। यह आश्चर्य है, केवल भगवत गीता ऐसा शास्त्र है जिसमें शिष्य गुरु से पूछता है और कृष्ण गुरु के स्थान पे खड़े होकर सारे संशयों का समाधान करता है। अन्य जगह तो प्रश्न पूछना ही अपराध माना जाता है, तुम भगवान के विषय में प्रश्न पूछते हो तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम नास्तिक हो, जाओ यहां से। इसका अर्थ है कि हमें कुछ नहीं आता, इसका अर्थ यह है कि हमें कुछ नहीं आता। तो प्रश्न पूछना चाहिए, जब तक शंका है तब तक भक्ति नहीं हो सकती है, जब तक शंका का समाधान हो तभी भक्ति शुरू हो सकती है, इसलिए प्रश्न उत्तर करते रहना चाहिए। तो और फिर गुरु शुश्रूषा शब्द का अर्थ है कि स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करना करके, जैसे स्नान कराते, वस्त्र बदलते, सोते खाते समय सहायता पहुंचा कर उसकी सेवा करनी चाहिए, यह गुरु शुश्रूषा कहलाता है। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को समर्पित कर दे। प्राण ही अर्थाय अध्या वाचा, प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, क्या एक आदमी के पास क्या होता है, जीवन होता है, संपत्ति होती है, बुद्धि होती है तथा वाणी होती है, और इन सबों को गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये लाइन हमने पहले आपको बता दी थी, गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पण करनी चाहिए। शरीर मन वचन, क्या क्या चीजें हैं, मन वचन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, माइंड बॉडी वर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, BMW, सबके पास BMW है, पैसा हो ना हो, BMW के सब मालिक हैं, बॉडी है, माइंड है, वर्ड्स हैं, सब भगवान को अर्पण कर। तो हम भगवान को BMW दे दिया BMW भगवान को अर्पण कर दे, कितना अच्छा है ना। वो संन्यास देते हुए लोकनाथ स्वामी कह रहे थे उस वक्त, किसको दे रहे थे, वो क्या नाम उनका, पतले जी हमारे मलेशिया और यहाँ इंग्लैंड के, क्या नाम, जनार्दन, राघव का हो गया कृष्ण नहीं, लोकनाथ महाराज संन्यास दे रहे थे उनको, वो बता रहे थे स्वयं, अभी नाम मेरे को याद आया, पतले से बहुत हमेशा हंसते रहते हैं, उत्साह से कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी विशेष बोला महाराज मुझे डंडा दिया, बोला ये लो BMW चढ़ो घूमो पूरी दुनिया में मैं आपको BMW दे रहा हूँ, डंडा हाथ में देते हुए बोला ये BMW, क्योंकि इसमें तीन डंडे हैं, वचन और वाणी और मन, ये भगवान को अर्पण करना। तो हम सबके पास ये धन है और ये भगवान को गुरु के माध्यम से अर्पण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन है, संपत्ति है, बुद्धि है तथा वाणी होती है, और इन सबको गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। गुरु को सब कुछ कर्तव्य, गुरु को सब कुछ कर्तव्य के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, किंतु ये भेंट भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बनावटी ढंग से नहीं अपितु हृदय से की जानी चाहिए। गुरु को अर्पण करना या भगवान को अर्पण करना, उसमें बनावटी दिखावापन नहीं होना चाहिए, नाम प्रतिष्ठा के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े श्रद्धा से होना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा वाली जो भेंट होती है वो रजोगुण की होती है। आपने काय के लिए दी, मेरा नाम हो इसके लिए, तो तेरा नाम हो गया, तेरे को फल मिल गया, आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो अभी तो तुमने ले लिया सब कुछ, तुम्हें यही चाहिए था, वो अभी मिल गया, तो ये दिखावे वाला नहीं, हृदय से देना चाहिए। ये भी बहुत मुश्किल समझना है, इसके साथ ही शिष्टाचार सीखने तथा भक्त का समुचित आचरण करने के लिए उसे भक्तों तथा संत पुरुषों के साथ रहना चाहिए। ये आ गया ना बात, हम पहले का कि शिष्टाचार कहां से सीखेगा, भक्तों के संग से, ये भी करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु को जो कुछ भी अर्पित किया जाए वो प्रेम तथा स्नेह पूर्वक किया जाए, भौतिक स्तवन के लिए नहीं। इसी प्रकार ये भी संस्तुत की गई है कि मनुष्य भक्तों की संगति करे, किंतु उसे तनिक विवेक से काम लेना चाहिए। वास्तव में साधु को अपने आचरण में संत सदृश जैसे होना चाहिए, साधव सदाचार, वही बात है, किसका संग करना चाहिए, सदाचारी भक्तों का करना चाहिए। ये दोनों बातों को विशेष, प्रभुपाद ने तीनों बातों को विशेष स्पष्ट किया है। जब तक वो आदर्श आचरणों में दृढ़ नहीं रहता, उसका साधु पद पूर्ण नहीं है। अतएव एक वैष्णव या साधु को आदर्श आचरण में दृढ़ और पूर्ण रहना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव का समान सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है उसकी सेवा की जानी चाहिए तथा स्तवन किया जाना चाहिए, किंतु यदि वो संगति के उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, यहां तात्पर्य समाप्त होता है। तो ये बातें हमने आपको पहले कह दी थी कि किसका संग करना चाहिए विवेक से, किसको केवल आदर देके दूर से प्रणाम करना चाहिए, संग क्यों करना चाहिए, आचरण सीखने के लिए करना चाहिए, अर्पण क्यों करना चाहिए, गुरु को भगवान तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए। तो ये सब बातें इस श्लोक में, वो मार्ग है जो भगवान को पसंद है। राम जी ने लक्ष्मण को कहा, मम गुण गावत पुलक शरीरा नयन भय नीरा, मेरे गुणगान करते हुए जिसके शरीर में पुलकावली हो, आंखों में आंसू बहे, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, वो मुझे तत्काल प्राप्त करता है। और चेतना महाप्रभु कहते हैं, नाम सुमरण करते हुए नैनम गंगा शुरू धारिया, एग्जैक्टली वही उसका अर्थ है। तो भगवान को तत्काल प्रसन्न करने वाला भक्ति वो है जिसमें नाम सुमरण बड़े आनंद से लिया जाए, आंखों में अश्रु धाराएं, गला रुंध जाए, रोमांच शरीर में हो जाए, तो वो भक्त भगवान ऐसे भक्त के हृदय में सदा निवास करते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं। तो ये साधन प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैंने नारद से, मेरे गुरुदेव से, मेरे मां के गर्भ में सीखा था, और मैं आपको बता रहा हूं, असुर मेरे असुर भाइयों, भगवान की भक्ति के अलावा सब कुछ यहां नाशवंत है, इसलिए आप तत्काल इसको लेके अपने जन्म को सफल कीजिए। तो ये श्लोक आगे ऐसे चलेगा, और फिर सारे कीर्तन करना शुरू कर देंगे बच्चे, और जब भोषण और अमर कहेंगे तो बड़े परेशान हो जाएंगे, बोला पहले तो एक था, अब सारे साथ हो गए। वो इतने सारे कीर्तन करेंगे लेकिन ये दोनों नहीं कीर्तन करेंगे, और हिरण्यकश तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसको कहते हैं बल्ब चाहे 1000 वाट का हो लेकिन करंट नहीं आएगा तो फ्यूज होगा, ये सब फ्यूज बल्ब है। वो बच्चे जो थे वो तो प्रहलाद के संग से कीर्तन करना शुरू किया, लेकिन इसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वही वही बैठा हुआ था प्रहलाद। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि भगवान जिसको एक सही बात तो यह है कि भगवान जिसको स्वीकार कर ले वही भगवान की भक्ति स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने बल से नहीं कर सकता, विद्या से नहीं कर सकता। वर्णेत, जिसको भगवान वर्ण कर ले, अपने बल से नहीं, विद्या से नहीं, बुद्धि से नहीं, योग से नहीं, तप से नहीं, नहीं, केवल भगवत कृपा से, केवल साधु की कृपा से, केवल किसी साधु की कृपा होगा तो जीवन। तो यहां प्रहलाद की कृपा हुई तो ये सारे बच्चे भगवान के भक्त बन गए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? महाप्रसाद गोविंद, हाँ जाओ।